पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित।
पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार इस वक्त आप सुन रहे हैं अर्पा रेडियो पर। आइए सुनते हैं हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत विषय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह प्रजापति का व्याख्यान।
सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से।
नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम शब्दगत अशुद्धियां के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। शब्दगत अशुद्धियां सामान्यतः शब्द के उच्चारण और उनके सही अर्थ न समझ पाने के कारण होती हैं। शब्दगत अशुद्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा करें इससे पहले हम शब्द का अर्थ स्वरूप और परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। एक या अधिक वर्ण से मिलकर बनी सार्थक ध्वनि शब्द है। शब्द सार्थक अथवा निरर्थक हो सकता है, जैसे कमल या कमल फूल का सार्थक अर्थबोध कराता है। वहीं कमल का यदि हम उल्टा उच्चारण करें लमक, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अर्थात प्रत्येक शब्द में एक सार्थक अर्थ होता है। अर्थ के स्तर पर लघुतम इकाई शब्द है। जैसे किसी प्रतिपादिक तत्सम शब्द बिना मिलावट का शब्द में अ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो अ ध्वनि के स्तर पर लघुतम इकाई तो है लेकिन अर्थ के स्तर पर नहीं। जैसे अतिथि, अधिक इत्यादि में अ उपसर्ग हटा दिया जाए तो केवल तिथि और धिक बचेगा, जिसका अर्थ क्रमशः दिनांक और धिक का अर्थ होगा त्योज या बेकार, लेकिन अ का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं यहाँ पर। इसी तरह ताप प्रत्यय से बने शब्द सुंदरता, कोमलता को लें तो इन शब्दों में भी ताप प्रत्यय हटाने से शब्द अर्थहीन नहीं होगा, बल्कि सुंदर और कोमल के अर्थ में प्रतीत हो जाएगी, परंतु ता स्वतंत्र रूप से अर्थहीन है। वहीं लोकतंत्र एक शब्द भी है और स्वतंत्र भी, तो पूर्ण अर्थ दे रहा है। इस तरह हम देखें तो स्पष्ट है कि वर्णों के सार्थक अनुक्रम में उत्पन्न ध्वनि शब्द कहलाता है। शब्द के संबंध में वैज्ञानिकों ने शब्द विज्ञान के अंतर्गत उसका विश्लेषण किया है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने शब्द की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, उनमें से हम कुछ एक परिभाषाओं को देख लेते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। पाश्चात्य विद्वान ब्लॉक तथा ट्रेलर के अनुसार शब्द वह अविभाजित रूप है जिसे और अधिक मुक्त व स्वतंत्र रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी तरह पाश्चात्य विद्वान ब्लूमफील्ड ने शब्द के संबंध में कहा है, एक स्वतंत्र रूप जो वाक्य नहीं है शब्द है। शब्द वह स्वतंत्र रूप है जो छोटे स्वतंत्र रूपों से मिलकर भी ना बने। इस तरह स्पष्ट है कि ध्वनियों के मेल से बना स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका अर्थ के स्तर पर और स्वतंत्र रूप नहीं बन सकता वह शब्द है। तात्पर्य कि वर्ण समूह जो स्वतंत्र रूप से अपना अलग अर्थ नहीं दे सकता शब्द है। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के दो भेद बताए गए हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द की सहायता से नहीं बनते बल्कि वे मूल रूप में प्रयुक्त होते होते रूढ़ हो जाते हैं। जैसे पवन अग्नि, पानी, कलम इत्यादि। वहीं यौगिक वे शब्द होते हैं जो एक या अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे विद्या और आलय मिलकर विद्यालय बना, देव और आलय मिलकर देवालय बना, पीत और अंबर मिलकर पीतांबर बना। ये यौगिक शब्द हैं। शिक्षार्थियों, शब्दगत अशुद्धियाँ और उसमें अशुद्धियों का शोधन किस तरह से किया जाए, प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था है, उसकी अपनी एक व्याकरण है, उसकी एक अपनी उच्चारण शैली है, ध्वनि विज्ञान है, जिसके आधार पर शब्द वाक्य या वाक्यांश बनते हैं। इन सब का महत्व तब है जब कोई भी वर्ण, शब्द, वाक्य या वाक्यांश मनुष्य को सार्थक अर्थबोध कराए। तात्पर्य कि शब्द वही है जो कि श्रोता को, सुनने वाले को सार्थक अर्थ की प्रतीति कराए, सार्थक अर्थ समझ में आए। किसी वर्ण अथवा शब्द की केवल ध्वनि उच्चरित होने मात्र से सार्थक वर्ण अथवा शब्द नहीं बन जाता। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, कमल का यदि उल्टा लमक कहेंगे तो लमक का कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा और वो लमक शब्द निरर्थक है। प्रत्येक भाषा का अपना निश्चित व्याकरण होता है जिसके आधार पर अर्थबोध संभव हो पाता है, या इसे यूं कहें कि प्रत्येक भाषा की व्याकरण व्यवस्था के आधार पर ही वाक्य की संरचना होती है। और जब व्याकरणिक आधार पर वाक्य की संरचना होती है तो वह सार्थक अर्थबोध कराता है। भाषा व्यवस्था के विपरीत प्रयोगों में अशुद्धियां होने से वाक्य और शब्द अशुद्ध हो जाता है। ये अशुद्धियां विभिन्न तरह से हो सकती हैं, जैसे उच्चारण, वर्तनी, शब्द, शब्दार्थ, वाक्य अथवा व्याकरण से संबंधित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कुछ प्रमुख कारण और उनके शोधन के उपाय मैं आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे स्वरों के हर्ष और दीर्घ रूप में अंतर न कर पाने के कारण जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम देखते हैं। जैसे आदि, आ और दि में बड़ी मात्रा अर्थात आदि, अधिकार, आशीर्वाद, बारात, आवाज, तालाब, बाजार, महाराज, रुचि, बड़ी रू, कौन अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध रूप देखिए, आदि दि में छोड़ी छोटी मात्रा, अधिकार ध में छोटी ई की मात्रा, आशीर्वाद, बारात, बारात की जगह बारात है ना, आवाज की जगह आवाज, बाजार, बाजार के स्थान पर शुद्ध उसका होगा बाजार, महाराज का शुद्ध रूप होगा महाराज, रुचि बड़ा रू बोले थे वहाँ पे क्या होगा रुचि, रा की छोटी मात्रा रुचि, कोन 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 एक चौकोर हिस्से का एक कोन हो सकता है, लेकिन कौन का तात्पर्य है कौन, यह शुद्ध रूप है। इसी तरह अनुस्वर और अनुनासिक के बारे में भेद न कर पाने के कारण भी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे हंस, हंसी, मुंह, चांद, पूंजी, अंगुली, अंजलि, अंग्रेजी, भाषाएं, पहुंचा इत्यादि। इनका शुद्ध रूप देखिए, हंस, हंस एक पक्षी हो गया और हंस हंसी हो गई। हंस ह के ऊपर अनुस्वर है, हंस पक्षी, लेकिन जब ह के ऊपर अनुनासिक आ जाए तो हंस मतलब हंसना, हंसी। इसी तरह मुंह, मुंह माँ के ऊपर अनुस्वर लगाते हैं सामान्यतः जो कि अशुद्ध है, शुद्ध रूप में उसको क्या बोलेंगे, मुंह, माँ के ऊपर अनुनासिक। इसी प्रकार चांद सामान्यतः अनुस्वर की गलतियां होने के कारण चा के ऊपर अनुस्वर लगा देते हैं, जबकि उसमें शुद्ध रूप में अनुनासिक लगेगा। इसी तरह पूंजी, पूंजी अगर उसमें अनुस्वर लगाएंगे तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, पुण्य, पुण्यजी, न आ रहा है, जबकि उसका शुद्ध उच्चारण होगा पूंजी, पूंजी। इसी तरह अंजलि, अ के ऊपर अनुनासिक लगा दें तो क्या हो जाएगा, अंजलि, अंजलि, शुद्ध रूप उसका अंजलि, अंजलि, अ के ऊपर अनुस्वर हो जाएगा। इसी तरह अंग्रेजी, सामान्यतः अंग्रेजी को गलत लिखते हैं, अ के ऊपर अनुनासिक लगा देने के बाद ग्रे और जी में ज के नीचे नुक्ता लगा देते हैं तो हो जाता है, उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, यह शुद्ध उच्चारण अंग्रेजी। इसी तरह भाषाएं, ए के ऊपर अनुस्वर लगा देते हैं, शुद्ध रूप में क्या इसको लिखेंगे, भाषाएं। ऐसे शब्द में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर अनुस्वर के जगह अनुनासिक लगा दिए और अनुनासिक के जगह अनुस्वर लगा दिए तो उसका अर्थ भिन्न हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा हंस और हंसी, हंस और हंसी, ए इसमें दोनों में बहुत अंतर है। इसी तरह वा और बा में अंतर न कर पाने के कारण जो अशुद्धियां होती हैं उनके उदाहरण देखें, बावजूद, सामान्यतः हम चर्चा करते हुए बोल देते हैं बावजूद। इसी तरह एक शब्द है विवेक, एक और शब्द लेते हैं देव, और शब्द वा के जगह बा जो सामान्यतः गलत और गलत उच्चारण है वही शब्द हम भी बता रहे हैं, वनस्पति, विख्यात, विधि, है ना, वो चर्चा के दौरान बोलती ना, और विधि का विधान है, विधि, है ना, वो गलत उच्चारण। इसी तरह व्यथा, ऐसे शब्द जो वा के जगह बा लिख रहे हैं। अब इनका शुद्ध उच्चारण देखिए, जैसे बावजूद गलत उच्चारण, अब इसका शुद्ध उच्चारण कैसे होगा, बावजूद। इसी तरह विवेक गलत उच्चारण, इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, विवेक। इसी तरह विचार है, सामान्यतः बोल देते ना हम विचार, विचार व्यक्त कर, उसका शुद्ध रूप नहीं है, शुद्ध रूप क्या है, विचार, वाह विचार। इसी तरह देवता या देव बोल देते हैं, गलत उच्चारण क्या करते हैं, देवता है या देव, उसका शुद्ध उच्चारण देवता या देव। इसी तरह वनस्पति है, वनस्पति क्या, बॉटनी जिसको बोलते हैं, क्या वनस्पति बोल देते हैं उसको, उसका शुद्ध उच्चारण क्या हुआ, वनस्पति। इसी तरह अरे वो तो बहुत विख्यात है, विख्यात, विख्यात नहीं, वो गलत है, उच्चारण क्या होगा उसका, विख्यात। इसी तरह विधि का विधान बोलते थे, विधि, विधि ये गलत है, इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, विधि। इसी तरह व्यथा, उसकी तो व्यथा ही अलग है, ऐसा सामान्यतः बोल देते हैं, वो गलत है, व्यथा गलत है, उसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, व्यथा है। इसी तरह श और मूर्धन्य ष और स षट्कोण, इसी तरह श और मूर्धन्य ष और सरौता स में अंतर न कर पाने के कारण भी शब्दगत अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे आदर्श है, उसको क्या, आदर्श, छत्तीसगढ़ी में उसको आदर्श ही बोलते हैं, यहाँ पे श श मूर्धन्य ष नहीं है तो क्या करते हैं इसमें, आदर्श स ही उच्चारण होता है, लेकिन उसका शुद्ध हिंदी में यदि, मानक हिंदी में यदि उसकी चर्चा करें तो उसका उच्चारण होगा आदर्श, ठीक है। ऐसा ही विशेष, प्रशंसा है, प्रशंसा छत्तीसगढ़ी में सही है प्रशंसा, लेकिन जब उसके मानक रूप जब बोलेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रशंसा, ठीक है। इसी तरह विश्वास है ना, हम बोलते हैं विश्वास, नहीं, उच्चारण सही है इसका क्या होगा? विश्वास। इसी तरह भाषा, गलत सही उच्चारण उसका क्या होगा? भाषा। इसी तरह शीर्षक बोल देते हैं, उच्चारण क्या होगा सही सही उसका? शीर्षक। इसी तरह शशांक, शशांक बोल देते हैं गलत, उसका उच्चारण क्या होगा? शशांक। ऐसे कुशासन, उसका उच्चारण सही क्या होगा? कुशासन। इसी तरह तपस्या बोल देते हैं, सरोता के स्थान पर क्या कर देते हैं? उसमें मूर्धन्य श लगा देते हैं या तालवी श लगा देते हैं, जबकि उसमें क्या होगा? तपस्या, स सरोता वाला आधा स होगा। इसी तरह सारांश बोल देते हैं, जबकि होगा क्या? सारांश। ठीक, इसी तरह एक अन्य शब्द है जिसमें तीनों स रहते हैं, शीर्षासन है क्या? शीर्षासन, ये शीर्षासन जो शीर्षासन बोलते हैं, शीर्षासन कर लिया वो नहीं, शीर्षासन कर लिया का उसका सही उच्चारण क्या? शीर्षासन कर लिया, शीर्षासन। इसी तरह छ, छतरी वाला, और छ, श, छतरी वाला में अंतर न कर पाने के कारण भी शब्दगत अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे क्षण, 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 क्षमा, क्षेत्र, छतरी, क्षति, रक्षा, ये क्या है? इसमें इन जो शब्द बोले वे शब्दों में, उन शब्दों में मैंने छतरी वाला छा, जबकि इसका उच्चारण क्या होगा? क्षण, क्षमा, क्षेत्र, क्षत्रिय, क्षति, रक्षा, इसके सही उच्चारण हुए। इसी तरह ण और न के उच्चारण में वर्तनीगत त्रुटियां साधारण तो हो जाती हैं। जैसे अशुद्ध शब्द देखें, शरण, रणभूमि, नारायण, पुण्य, रामायण, कल्याण, प्राण, प्रणाम, श्रमण कुमार, मरण, करण इत्यादि, ये शब्द क्या हैं? इन्हों में, इन शब्दों में ण के जगह न का उच्चारण हुआ है, जो कि अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है। इनका शुद्ध रूप देखिए, शरण, रणभूमि, नारायण, पुण्य, रामायण, कल्याण, प्राण, प्रणाम, श्रवण कुमार, मरण, करण, अणु, आणविक इत्यादि। इन शब्दों में न के स्थान पर ळ का प्रयोग ही शुद्ध है। प्यारे शिक्षार्थियों, इसी तरह ळ, ड, ढ, ळ और गलत प्रयोग होने पर भी अर्थ, अर्थगत अशुद्धियां आ जाती हैं। जैसे घड़िया, बड़े, पेड़, पेड़ा, लड़का, रोड, सोडा, हड़ताल, पढ़ना, सीढ़ियाँ, ये जितने भी शब्द मैंने अभी कहे ये शब्द अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध रूप देखिए, घड़ियाँ, बड़े, पेड़, पेड़ा, लड़का, रोड, सोडा, हड़ताल, पढ़ना, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ। इसी तरह र के रेफ का गलत प्रयोग होने पर भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। जैसे अशुद्ध रूप आर्शीवाद, श के ऊपर रकार अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप आशीर्वाद, व के ऊपर रकार रहेगा। इसी तरह आविर्भाव लिखते हैं सामान्यतः, प्रादुर्भाव लिखते हैं, इसका शुद्ध देखिए, आविर्भाव, प्रादुर्भाव, दुर्दशा, ये शुद्ध रूप हैं। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग के कारण भी अशुद्धियां हो जाती हैं। सामान्यतः जगत, हम तत्सम शब्द का प्रयोग करते समय यह अवश्य ध्यान दें कि हलंत कहाँ पे लगाना है। इसी तरह जैसे इस उदाहरण के लिए जगत और जगत, जगत दुनिया, जगत इसमें त में हलंत लगेगा, लेकिन जगत जब बोलेंगे तो वो कुएं का जगत हो गया। विराम चिन्हों में की भूल के कारण भी अशुद्धियां होती हैं, जैसे अंतकरण, पर्याय, पुनः, सनय सनय, प्रात, निशुल्क, दुख इत्यादि। ये शब्द अशुद्ध हैं, इनका सही और शुद्ध रूप देखिए, अंतकरण, पर्याय, पुनः, शनय शनय, प्रातः, निःशुल्क, दुख है, दुख के बाद विसर्ग औखा, दुख। लेकिन याद रहे यदि वो सुख दुख लिख रहे हैं तो उसमें दुख जुड़ा हुआ रहेगा, उसमें विसर्ग की जरूरत नहीं है या उसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा सकती। इसी तरह हिंदी में अरबी, फारसी या उर्दू शब्द का प्रयोग करते समय भी नुक्ता का प्रयोग सही स्थान पर न होने के कारण गलत उच्चारण हो जाता है, उसका अर्थ भी गलत हो जाता है या अर्थ भिन्न हो जाता है कहें। जैसे अर्क, अर्क, अर्क जो है सूर्य, उसी तरह अर्क, क में जो नुक्ता है उसका अर्क, जैसे किसी चीज़ का हम लोग रस निकालते हैं वो क्या हो गया, अर्क। इसी तरह ताक, तक मतलब ताक झाक से ताक है। इसी तरह ताक, क, क में जो नुक्ता है वो क्या, दीवारों में जो पुराने घर होते थे उसमें ताक होता था जिसमें दिया रखते थे या सामान रखते थे। इसी तरह कालीन, कालीन, कालीन इसका मतलब समय, समय के सापेक्ष, अर्थात कि समय का बोध करने वाला, काल संबंधी। लेकिन उसी को जब कालीन बोलेंगे तो बिछाने वाला, गलीचा। इसी तरह खसरा, खसरा, उसको खसरा हो गया है बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, वो एक तरह का रोग है, लेकिन जब उसको खसरा बोल देंगे तो वही खाता वाला और खसरा हो जाएगा। इसी तरह खैर, उसका क्या है, खैर बोलते हैं सामान्यतः उच्चारण कर देते, उसकी खैर नहीं, खैर उसका ऐसा बोल देंगे तो क्या होगा, उसका खैर नहीं का मतलब हो जाएगा उसका कत्था नहीं, जबकि वो गलत हो गया, उसको क्या बोलेंगे, खैर, उसका अर्थ होता है कुशल। इसी तरह नख, नाखून, और नख, ख में जो नुक्ता है वो क्या है, नख, पतंग की डोर। इसी तरह गरज, गरज चमक के साथ वर्षा होने वाली को क्या बोलेंगे, गरज, ये मेघ ध्वनि से संबंधित है, लेकिन गरज है उसको, उसको क्या गरज पड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको क्या मतलब है। इसी तरह सागर, समुद्र, और सागर, पान रखने वाला पात्र या पात्र, या बोलेंगे क्या, पानदानी जिसको बोल सकते हैं, बोलते हैं। इसी तरह जंग है ना, जंग, लड़ाई, इसी इसको अगर उसमें नुक्ता लगा दें, जंग है, मोर्चा। इसी तरह जन, मनुष्य, लेकिन अगर उसमें जमे, जन, जमे अगर नुक्ता लगा जन तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, नारी। इसी तरह जरा, बुढ़ापा है, नुक्ता लगा देंगे उसमें जरा, कम या थोड़ा, जरा सा देना, जरा सा, जरा सा देना। इसी तरह जलील है, इसका अर्थ होगा क्या, प्रतिष्ठित, लेकिन जब जाक में नुक्ता लगा देते तो उसमें जलील किया बोलते हैं ना, उसका वाक्य प्रयोग क्या बोलते हैं, उसका जलील किया। एक अन्य शब्द ले सकते हैं फन, फन, सांप का फन, फुफकारता फन है ना। दूसरा फन, फन, फनकार बोलते हैं, मतलब उसका गायकी या गायक या गायिका, उसको बोला फनकार। ऐसे अनेक शब्द हैं जो उर्दू, फारसी, अरबी, फारसी से लिए गए हैं, लेकिन नुक्ता का गलत प्रयोग, गलत प्रयोग के कारण सही अर्थ नहीं दे पाते या अर्थ भिन्न हो जाते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि हमने आज शब्दगत अशुद्धियों के संबंध में चर्चा की है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम जब भी किसी भी शब्द का उच्चारण करें या किसी से बात करें, वार्तालाप करें या लिखें, उस वक्त शब्दगत अशुद्धियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि पहला तो यह कि वह स्वयं भी अपने उच्चारण को शुद्ध और प्रभावी बना सकता है, और दूसरा सामने वाला जो श्रोता होता है उस पर भी एक सार्थक प्रभाव पड़ता है।
ज्योतिष योग का साधन उन्नत पर्यावरण विमल हो, मनुष्यता विकसित हो, सब में जीवन सजल सुफल हो। ज्ञान विज्ञान सत्य शिव सुंदर सबका हो आरोहण, प्रेम अहिंसा विद्या सर से विकसित जीवन दर्शन।